सुप्रभात बच्चों, आज के इस भाग में हम आपके पाठ्य पुस्तक व्याकरण संसार के पाठ दो वर्ण विचार के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आपके पाठ वर्ण विचार की। अब बच्चों हम बात करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों वर्ण के बारे में अगर हम देखें तो बच्चों जब हम कुछ बोलते हैं, इस पाठ से पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा था और भाषा के दो रूप देखे थे हमने। हमने क्या देखा था कि भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक, यानी लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ठीक है बच्चों, अब मौखिक भाषा में क्या होता था कि जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुख से, यानी हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, कुछ आवाज़ निकलती है। और हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियाँ लिखी जाती हैं तो अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। अतः बच्चों वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों देखा आपने वर्ण का क्या अर्थ है, यानी वर्ण जब किसी भी भाषा को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसके लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए बच्चों, यहाँ पर अनय और स्क्विटल की जो बातचीत है इसमें अगर हम देखें तो अनय कहते हैं कि यह देखो स्क्विटल, इस किताब में क अ म अ ल अ लिखा है। तो स्क्विटल कहते हैं, स्क्विटल कहती हैं, अनय तुम कमल को इतना रुक रुक कर क्यों पढ़ रहे हो? तो अनय कहते हैं, स्क्विटल कमल शब्द क अ म अ ल अ वर्णों से मिलकर बना है और मैं वर्णों को अलग अलग पढ़ रहा था। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जब वो कमल शब्द पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उनके मुंह से जो ध्वनियाँ निकल रही थी उसके उसी के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। तो बच्चों ये तो थी बात वर्ण की। अब इसके अलावा हमने क्या सीखा बच्चों कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और बच्चों वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, यानी अगर हमारे मुंह से कोई आवाज़ निकली हम उससे लिखते हैं तो वो क्या होगा, वो वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप कहलाएगा। ठीक है, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको जब हम लिखते हैं तो वर्ण कहलाता है और ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। ठीक है, चलिए ये तो थी बच्चों वर्ण की बात। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हिंदी में वर्ण दो प्रकार के हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, अब बच्चों स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं इसकी जानकारी भी हम लेंगे। इसके अलावा एक बात मैं और आपको बता दूं कि स्वर और व्यंजन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब बात करते हैं बच्चों हम स्वर की। तो बच्चों स्वर यानी जिनके उच्चारण में प्राण वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर आती है उन्हें हम स्वर कहते हैं, यानी कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। और बच्चों इस तरह अगर हम बात करें तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। देखा आपने, ये 11 स्वर हो गए। और बच्चों यही स्वर जब व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो उनकी मात्राएं प्रयुक्त होती हैं। आपको पता है ना मात्राएं, ठीक है, यानी स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसकी जगह पर उनकी मात्राएं प्रयोग की जाती हैं, उनकी मात्राएं प्रयुक्त होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अभी तक हमने स्वर पढ़ा, मात्रा पढ़ी, अब जरा हम स्वर के भेद देखते हैं कि स्वर के कितने भेद हैं। तो बच्चों जब मैंने अभी आपको स्वर बताया और उसमें से मैंने 11 स्वर आपको बताए तो उन 11 स्वरों का उच्चारण करते समय आपने देखा होगा कि कुछ स्वर का उच्चारण करने में कम समय लग रहा था और कुछ स्वरों का उच्चारण करने में दुगुना समय लग रहा था, नहीं कि थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था। तो बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण जैसे उच्चारण में कैसे किया था, अ इ उ रि, ये चार जो हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं बच्चों, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है उन स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये क्या हैं? ये दीर्घ स्वर हैं। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा कि स्वर के दो भेद हो गए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं कि बच्चों अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग क्या होता है, क्योंकि इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो अनुस्वार क्या होता है बच्चों, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। आपने देखा होगा कि बिंदी लगाई जाती है ऊपर, ठीक है, तो इन्हीं जो वर्ण के ऊपर लगने वाले जो बिंदु हैं उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं अंगूर, तो अंगूर में देखिए ऊपर बिंदी लगती है ना, अंगूर, ठीक है। इसके बाद लंगूर, सिंदूर, देखा आपने, ये जो बिंदियां लगाई जाती हैं इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अब बात करते हैं अनुनासिक की। तो बच्चों, वर्ण के ऊपर लगाए जाने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ण के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगता है वो अनुनासिक कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जब हम बोलते हैं ना आंख, तो आंख में ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, चांद, चांद में भी ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, चिड़ियां, चिड़िया में यौ के ऊपर देखिए चंद्र बिंदु लगा है, गांव, इसमें भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो इसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसके अलावा विसर्ग, तो बच्चों वर्ण के बाद लगाई जाने वाली जो दो बिंदियां होती हैं, यानी वर्ण के बाद लगाई जाने वाली दो बिंदियां विसर्ग कहलाती हैं। जैसे अ और त, अ और त के बाद अगर विसर्ग लगा हुआ यानी कि दो बिंदी आगे लगी हुई, तो उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, अतः, ठीक है, यानी इसका उच्चारण ह की तरह होता है। यानी वर्ण के आगे जो बिंदियां लगाई जाती हैं, जो दो बिंदियां लगाई जाती हैं, उसका उच्चारण ह की तरह होता है और उसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब हमने वर्ण के दो हिस्से पढ़े थे ना, स्वर और व्यंजन, स्वर हमने देख लिया, अब पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। तो बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था बच्चों कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होता है उनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और अगर कोई व्यंजन स्वर के साथ नहीं है तो वो उसका हम जब लिखते समय उसे हलंत लगाकर लिखते हैं। अब बच्चों, अगर हम बोलते हैं क, तो क में देखिए अ की ध्वनि आ रही है ना, इसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था बच्चों आपका स्वर और व्यंजन की जानकारी। ठीक है, व्यंजन में मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि व्यंजन के भेद के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक में सबसे पहले दिया है संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर क्या होता है, तो बच्चों श, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, क्योंकि ये दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जब हम क्ष बोलते हैं तो देखिए उसमें क और श की भी ध्वनि निकल रही है, इसी तरह से त्र बोलते हैं तो उसमें त और र की भी ध्वनि निकल रही है, इसी तरह से ज्ञ बोलते हैं तो ज, ज और य की भी ध्वनि निकल रही है, इसलिए ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों द्वित्व व्यंजन की। तो द्वित्व व्यंजन में जब एक समान व्यंजन दो बार आता है तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे चक्कर, अब चक्कर में देखिए क आधा भी आ रहा है और पूरा भी आ रहा है, यानी दो समान व्यंजन आते हैं। तो जब एक समान व्यंजन दो बार आए तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन में दो असमान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क्यों, क्यों में देखिए आधा क और य आया है, उसी तरह से छ, तो छ में आधा च और छ आया है, तो इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने वर्ण विचार में स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़ा, हमने वर्ण के बारे में देखा, उसके बाद हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा, अनुसार अनुनासिक देखा, विसर्ग देखा, मात्राएं देखी, ठीक है, और संयुक्ताक्षर, द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि इस भाग में आपको समझ में आया होगा और वर्ण विचार पाठ में जो भी आपकी शंकाएं हैं वो दूर हो गई होंगी। इस भाग के लिए इतना ही, धन्यवाद।